नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीड मी विद यू पर। मेरा नाम है रूबन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट है रिच डैड पुअर डैड बुक समरी, जिसमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बताने और समझाने की कोशिश की है। आज का पॉडकास्ट पूरा हिंदी में होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेखक के दो पिता थे, एक अमीर और दूसरे गरीब पिता। जिसमें गरीब पिता थे वो पढ़े लिखे समझदार PhD किए हुए थे, और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था, और उसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने स्कॉलरशिप के सहारे ही किया था। और वहीं उनके अमीर पिता सिर्फ 8वीं तक पढ़े हुए थे, उसे आगे उन्होंने नहीं पढ़ा। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने अपने करियर में कड़ी मेहनत की थी। वहीं एक सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा, तो दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। वहीं एक पिता के मरने पर उनके परिवारजनों, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली थी, जबकि दूसरे पिता के मरने पर उन्होंने अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। दोस्तों, यहां पर लेखक के द्वारा इस बुक में 10 अध्याय और कुछ सबक बताए गए हैं, जिसमें आपको पहला अध्याय बता रहा हूँ। उसी प्रकार एक पिता का कहना था कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे का कहना कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। वहीं मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दोस्तों, शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। वहीं लेखक ने बताया है कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ कि मुझे बाल बच्चों को पालना है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि एक अमीर व्यक्ति की सोच में और एक गरीब व्यक्ति की सोच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक का एक ही सिद्धांत है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, जहाँ एक गरीब व्यक्ति यह सोचता है कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि दूसरे का मानना है कि मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है, तो आप गलत हैं। दोस्तों, लेखक ने यहाँ पर संपत्ति और दायित्व को बड़े ही खूबसूरत ढंग से बताया है कि संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, जो आप आगे देख पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट ढंग से चित्र और डायग्राम के द्वारा बताया गया है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं? वो अपने बच्चों को शिक्षा की किस प्रकार करते हैं पैसे के बारे में? अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते? ये अध्याय नंबर 1 जो पूरा हुआ। दोस्तों, यहाँ पर लेखक एक कविता के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, जो लेखक के पसंदीदा कवि हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने 1916 में द रोड नॉट टेकन कविता के माध्यम से कुछ बताना चाहा है। बहुत ही सुंदर काव्य किया है, यहाँ पर जिनकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वह राह जिसे चुना नहीं गया, पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी, और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था। वहीं आखिरी लाइन क्या कहती है, एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थी, और मैंने कम चली हुई राह को चुनी, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा बताई गई यह पंक्ति बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत की गई है। इसी अध्याय में लेखक फर्स्ट में एक सुंदर सा मैसेज देते हुए कहते हैं, पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, पैसे के साथ साथ शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना पैसा। तो इसे लास्ट तक सुनते रहिए। अब चलते हैं दूसरे अध्याय में। दूसरा अध्याय क्या कहते हैं, इसमें लेखक कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेखक ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। दोस्तों, पैसे बनाना अर्थात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार लेखक ने गलती की थी उस प्रकार आपको नहीं करना है कि जिससे आप गैर कानूनी ढंग से करें और कानून के चपेट में फंस जाए। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि पैसे के लिए आपको भागना ना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। लेखक गरीब और मध्यम वर्ग के बारे में कहते हैं कि एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। अर्थात लेखक कहते हैं कि कब तक आप अपने समस्या का निवारण जॉब करके कुछ पैसों से उस समस्या को हल करते रहेंगे। लेखक कहते हैं कि अरे, नौकरी तो दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। दोस्तों, इस सेंटेंस को आप गहनता से विचार कर सकते हैं कि लेखक ने इस सेंटेंस में ऐसा क्या कहा कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। इसी तरह दोस्तों, दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। ऐसे ही यहाँ पर अध्याय 2 खत्म होता है, अंत होता है। तो अब चलते हैं अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 क्या कहता है, उसमें लेखक कहते हैं कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया था और अमीर डैडी का पूरा साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में था और माइक इसी तरह अपने बेटे को सिखा रहा था जिस तरह उसके डैडी ने उसे सिखाया था। वही लेखक 1994 में 47 साल की उम्र में और उनकी पत्नी किम की उम्र 37 साल की थी, उन्होंने भी अपने साम्राज्य को कुछ इस तरह बढ़ा लिया था कि उन्हें अब कुछ करने की जैसे मानो जरूरत ही नहीं है। इसका कारण यह है कि दौलत अपने आप मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। मानो कि पैसे एक पेड़ लगाने की तरह आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसके बाद पेड़ आपको सुख के लिए छाया और फल देता है। लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। उसी तरह इसी अध्याय में लेखक ने संपत्ति और दायित्व को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। वैसे मैं आगे बात कर चुका हूँ कि किस तरह संपत्ति यानी एसेंट और दायित्व यानी लायबिलिटी अच्छी तरह से चित्र और डायग्राम के अनुसार बताया गया है कि इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही यानी एसेंट ही खरीदना चाहिए। यह सब बताते हुए लेखक कहते हैं कि सिंपल भाषा में उसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आता तो लेखक कहते हैं समझने की कोशिश करो। कीप इट सिंपल स्टूपिड, मूर्ख इसे आसान ही रहने दो। और यहीं इसी के साथ अध्याय 3 खत्म होता है। अध्याय 4 में चलते हैं। अध्याय 4, अपने काम से काम रखो। लेखक इस बारे में जब लोगों से बात करते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, तब वह कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं क्या बैंक के मालिक हैं, वह सामान्य जवाब देते हैं नहीं, मैं वहाँ काम करता। दोस्तों, यहाँ पर अक्सर लोगों से पूछा जाता है तो वे अपने प्रोफेशनल को बताते हैं बिजनेस। लेखक ने कहा है कि यहाँ पर एक बिजनेस और प्रोफेशन में बहुत बड़ा अंतर है। यह एक मिथ है कि लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस समझ लेते हैं। लेखक बिजनेस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो, बिना जरूरत के ना होने पर भी कोई और चलाकर मेरे लिए पैसा बना सकता है, यह है बिजनेस। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं होगा। यही लेखक कहते हैं कि जब वे कहते है कि अपने काम से काम रखे तो उनका यह मतलब है कि संपत्ति एसेंट वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत। इस अध्याय में लेखक ने यह भी कहा है कि 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। लेखक अब यहाँ से अपने करियर में रियल इस्टेट और म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो हमेशा प्रॉपर्टी को कम दाम पर खरीदते हैं और जब उसका भाव बढ़ जाता है तब वह दुगनी मुनाफे में उसे बेच देते हैं। इसी तरह वह कहते हैं कि पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है। अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। यहाँ पर विलासिता का मतलब है कि संपत्ति और ऐसी संपत्ति जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे गाड़ी, फ्रिज, टीवी, बड़े घर जैसे वस्तु पर उससे आप लेकर उस पर और खर्च करते रहते हैं जैसे कि उसका मेंटेनेंस, सर्विस। इसी के साथ अध्याय 4 खत्म होता है। अब चलते हैं अध्याय 5 में। पांचवा अध्याय टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत बताता है। लेखक कहते हैं कि स्कूल में उन्हें एक कहानी बताई गई थी जो रॉबिन हुड और उनके गिरोह की थी। अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। जो अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था। अमीर डैडी ने लेखक और माइक को बताया है कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन युद्ध समय टैक्स लगाया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच सिविल वॉर के खर्चों को जुटाने के लिए टैक्स लगाया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया और 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। टैक्स के चलतन चाय पर टैक्स लगाने के कारण टी पार्टी की घटना हुई थी जिसमें क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली जो बुक में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि किसी सिस्टम में काम करने से अच्छा है कि उस सिस्टम में मालिक आप हो। अपने कॉरपोरेशन के मालिक बनो, अपना वर्चस्व बनाओ। अकाउंटिंग की बात कहते हुए लेखक कहते हैं कि अकाउंटिंग मस्तिष्क का बायां भाग है और निवेश मस्तिष्क का दायां भाग है। और साथ इस बुक में बाजार की समझ, कानून, उनके मुकदमों से सुरक्षा और टैक्स जो इस बुक में बताया गया है और समझाया गया है। आपको कॉरपोरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लेखक ने एक बुक को रिफ़र किया है जिसका नाम इंक एंड ग्रो रिच है, जिसके बारे में लेखक खुद बताते हैं। साथ ही में संक्षेप में बताया है कि कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग खर्च करते हैं जबकि कॉरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी टैक्स चुकाते हैं। तो यहाँ पांचवा अध्याय पूरा होता है। अध्याय छः में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आम इंसान कोई भी काम करने से पहले वह खुद के बारे में शंका करता है। किसी भी काम में आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें की जरूरत होती है, जिसमें हम गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि। इसी तरह कुछ मिलाकर हमारे भविष्य में स्कूलों के नंबर से ज़्यादा असर करता है। इंसान की प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमता के बारे में शंका। अपने आप में फाइनेंशियल IQ को विकसित करना जिससे आप असफल नहीं हो सकते और पुराने सिद्धांतों को बदल सकते हैं। आपके पास पैसे की समझ होनी ज़रूरी है। अगर उस समझ के लिए टाइम नहीं है तो टाइम निकालो। वित्तीय बुद्धि को बढ़ाओ। वित्तीय बुद्धि चार तकनीकी दक्षता से मिलकर बनती है। पहला वित्तीय साक्षरता अंकों को पढ़ाने की योग्यता, दूसरा निवेश की रणनीति धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान, तीसरा बाजार मांग और पूर्ति। एलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल और बिल गेट्स की बाजार की मांग को समझो। $20,000 में खरीद कर $60,000 में बेच दिया, जबकि उसकी असल कीमत $75,000 की थी। इसी तरह रियल एस्टेट में लेखक काम करते हैं, जो लेखक उसे एक डायग्राम और चित्र के द्वारा बताते हैं। और चौथा है कानून। लेखक कहते हैं अकाउंटिंग कॉरपोरेशन स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। लेखक हमेशा नियम के भीतर रहकर खेल खेलने की सलाह देते हैं। किस तरह ऐसे मौकों को खोजो जो दूसरों को नहीं दिखाई। जैसे उस मकान के बारे में लेखक कहते हैं कि मकान के साथ उसे 4 प्लॉट और मिल रहे थे, जिसे उसने मकानों को तोड़कर 5 प्लॉट बिल्डर को एक अच्छी कीमत पर बेच दिया। इसी प्रकार लेखक कहते हैं चाहे आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप जो नहीं जानते वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। इस तरह लेखक कहते हैं जोखिम तो हर जगह रहता है, तो उससे बचने की जगह उसे मैनेज करना सीखें।